ये आकाशवाणी है। अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होने तथा एक दूसरे की ताकत बनने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने आज तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल सम्मेलन में अपने प्रारंभिक वक्तव्य में अनिश्चितता और चुनौतीपूर्ण मौजूदा वैश्विक माहौल पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विश्व अभी कोविड के प्रभाव से पूरी तरह नहीं उबरा है और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे टकरावों से ग्लोबल साउथ देशों की विकास यात्रा के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि ये देश जलवायु परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं का सामना कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देश विकास की चुनौतियों, प्राथमिकताओं और समाधानों पर विचार विमर्श जारी रखेंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ग्लोबल साउथ के देशों से कम लागत वाली और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। सम्मेलन में विदेश मंत्रियों के पहले सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि विचारों के आदान प्रदान का उद्देश्य इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे हितों को परिभाषित करता है। इराक ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार की प्रशंसा की है। इराक के उप प्रधानमंत्री फवाद हुसैन ने आज बैठक में कहा कि इराक ग्लोबल साउथ का एक अभिन्न अंग है और सभी के लिए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस समय मंकीपॉक्स का कोई रोगी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकीपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक बैठक में मंकीपॉक्स की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय करने का निर्णय लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल चेन्नई की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान भारतीय तटरक्षक बल के एक नए अत्याधुनिक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वे चेन्नई में समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र और पुदुचेरी में तटरक्षक एयर एन्क्लेव का भी उद्घाटन करेंगे। चेन्नई बंदरगाह पर स्थित प्रदूषण केंद्र समुद्री प्रदूषण प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। बाद में श्री राजनाथ सिंह दिवंगत डॉक्टर कलाइनार एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना से न केवल स्वास्थ्य सेवा समुदाय बल्कि पूरा देश चिंतित है। भुवनेश्वर में आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता की घटना के बाद से ही सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है और यह केवल मेडिकल स्टाफ का मामला नहीं है। श्री रिजिजू ने कहा कि पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर भी गुस्सा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस घटना में सभी जरूरी कदम उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन देते हुए उनसे जनहित में कार्य पर लौटने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों को सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि प्रौद्योगिकी समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण है और देश नागरिक केंद्रित प्रौद्योगिकी संचालित आधुनिक कानूनी प्रणाली के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मेघवाल ने आज केरल उच्च न्यायालय में मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में मामलों का लंबित रहना एक बड़ी चुनौती है। आकाशवाणी समाचार से हर घंटे प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों के प्रसारण क्रम में संशोधन किया गया है। ये 17-18 अगस्त को मध्यरात्रि 12 बजे से प्रभावी होगा। इस बदलाव के बाद 5 मिनट के हिंदी के सभी समाचार बुलेटिन का प्रसारण पहले होगा, उसके बाद 5 मिनट के अंग्रेजी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।